SBS हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। पेश हैं भारत के समाचार। लद्दाख से राजधानी दिल्ली की दूरी एक महीने पैदल मार्च द्वारा तय करने के लिए निकले अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का कारवां लगातार बढ़ता चला आ रहा है। उनका यह मार्च लद्दाख और हिमालय को बड़ी कंपनियों के खनन से बचाने के लिए और दुनिया को तेज़ी से हो रहे जलवायु परिवर्तन के खतरे से आगाह करने के लिए है। श्री वांगचुक के मार्च में स्थानीय बौद्ध धर्मगुरु, निवासी लद्दाख स्काउट्स के सेवानिवृत्त जवान और पर्यावरण कार्यकर्ता शामिल हैं। अपने अनूठे कारवां के साथ लद्दाख के सबसे ऊंचे 17,450 फीट पर स्थित तांगलाला दर्रे को पार करने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और वैश्विक नेताओं को एक महत्वपूर्ण वीडियो संदेश भेजा।
We want to make two appeals to the people of the world and the leaders of the world from the heights of this pass. Firstly, a local appeal to the Prime Minister of India to please safeguard these fragile ecosystems of the high Himalayas under the sixth schedule of the Indian Constitution, thereby giving the right to take stewardship of these ecosystems to the local indigenous people. Our second appeal is a global appeal to the world leaders and citizens of the world to please cut down on carbon emissions as urgently as possible because we have very little time left. Here I have a climate clock prepared by the best scientists in the world and we have less than 5 years left before things go irreversible and out of control. Only 5 years or less, and yet our heads of state, when they set their targets for carbon neutrality, if we see on this list, it's less than what needs to be done. I'm sad to see that China and my own country, India, the two giants on this planet, have targets that are way beyond what is necessary.
इस साल की यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा की वार्षिक बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत का पक्ष रखेंगे। वे बैठक को 28 सितंबर के दिन संबोधित करेंगे। इससे ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी 21 सितंबर को संयुक्त राज्य अमेरिका के डेलावेयर शहर में शुरू हो रहे क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। एक अन्य महत्वपूर्ण ब्रिक्स देशों की बैठक रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में 10 से 12 सितंबर के दौरान हो रही है। ब्रिक्स और ब्रिक्स प्लस उच्च स्तरीय सुरक्षा अधिकारियों की इस बैठक में भारत की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शामिल होंगे। इस बैठक में ब्रिक्स के संस्थापक देशों ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका के अलावा 5 अन्य देशों ईरान, इथियोपिया, इजिप्ट, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात देशों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे, जिन्होंने ब्रिक्स की पूर्ण सदस्यता ग्रहण कर ली है। ब्रिक्स बैठक के अलावा श्री डोभाल की उच्च स्तरीय रूसी अधिकारियों से मिलकर रूस यूक्रेन युद्ध विराम को लेकर चर्चा की भी संभावना है। बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने रूस और यूक्रेन के राष्ट्राध्यक्षों व्लादिमीर पुतिन और व्लोडिमीर जेलेंस्की से युद्ध विराम को लेकर चर्चा की थी। भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच फिर से जातीय हिंसा भड़कने के बाद राज्य सरकार ने शनिवार को राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया। हिंसा की वारदात जिरीबाम जिले में हुई जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई। इससे पहले मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री मेरेम्बम कोइरंग के विष्णुपुर जिले में स्थित आवास पर बम से हमला किया गया था। हिंसा को रोकने के लिए असम राइफल्स, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और मणिपुर पुलिस के कमांडो की टीमों को तैनात किया गया है। हिंसा से निपटने के लिए मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और राज्य के सभी विधायकों ने राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य को मांगों की एक सूची सौंपी है। इस सूची में यूनिफाइड कमांड यानी एकीकृत कमान संविधान के अनुसार राज्य की निर्वाचित सरकार को सौंप कर पर्याप्त अधिकार और जिम्मेदारियाँ देने की मांग शामिल है। एक अन्य मांग सरकार और कुकी विद्रोही समूहों के बीच ऑपरेशन सस्पेंशन एग्रीमेंट को ख़त्म करने की भी है ताकि सुरक्षा बल कड़ी कार्रवाई कर सकें। मणिपुर के स्कूली छात्रों ने एक मानव श्रृंखला बनाकर इस जातीय हिंसा को ख़त्म करने की मांग की। सुनिए एक छात्रा की गुहार।
Stop this, all the worse that is happening between Meitei and Kukik tribes, and it is making us like traumatized, and like it is very difficult us to study, and then peoples are getting like being like a monster, and we don't want that. So we are just making a human chain on that. On behalf of that, all our HRD students are here to make human chain.
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत अधिकृत जम्मू के रामबन क्षेत्र में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर की जनता को पाकिस्तान का साथ छोड़ भारत में शामिल होने का न्योता दिया।
भारत के लोग आपको विदेशी नहीं मानते हैं, पीओके के लोगों को हम अपना मानते हैं, आइए हमारे साथ आइए।
भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव लड़ रही है, जहां उसका मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन के साथ है। इससे पहले शनिवार को जम्मू के पलौरा में एक जनसभा संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि प्रांत में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार कभी नहीं बन पाएगी, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला सरीखे विपक्षी नेता लोगों को बता रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत ने उनके ऊपर कितने अन्याय किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महिला पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया गत शुक्रवार प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस ने विनेश फोगाट को हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जुलाना क्षेत्र से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। विनेश ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि उन्होंने कुश्ती को अलविदा कह क्यों चुनाव लड़ने का निर्णय लिया।
बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को, देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को, जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है।
आपको ज्ञात होगा कि विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और भाजपा के बाहुबली नेता बृजभूषण शरण सिंह के महिला पहलवानों के साथ कथित यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने को बृजभूषण शरण सिंह ने एक सुनियोजित राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा बताया, जिसके बाद भाजपा ने उनके हरियाणा की चुनावी राजनीति के बारे में बोलने पर पाबंदी लगा दी। और अब समाचार खेल जगत से। पेरिस पैरालंपिक 2024 खेलों में भारत ने अपनी चुनौती 7 स्वर्ण 9 रजत और 13 कांस्य पदकों के साथ कुल 29 पदक जीतकर समाप्त की। पैरालंपिक खेलों में भारत का यह अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा, जिसमें वह अंक तालिका में 18वें स्थान पर रहा। भारत ने इन खेलों के लिए अपना सबसे बड़ा दल भेजा, जिसमें 12 खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाले 84 खिलाड़ी शामिल थे। अवनी लखेड़ा ने लगातार दूसरे खेलों में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता और लगातार 2 स्वर्ण और कई पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय पैरालंपिक एथलीट बनी। तो ये थे अब तक के समाचार। नमस्कार।